आज हम जेके राउलिंग के उस उपन्यास पर बात करने जा रहे हैं जिसने कह सकते हैं कि एक पूरी पीढ़ी को पढ़ना सिखाया
और साहित्य की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया।
बिल्कुल, हैरी पॉटर एंड द सॉसरर्स स्टोन। देखिए, हम सब इसकी कहानी तो जानते ही हैं, एक अनाथ लड़का जिसे पता चलता है कि वो एक जादूगर है।
हाँ, कहानी तो बहुत प्रसिद्ध है।
तो आज हम कहानी सिर्फ सुनाने के बजाय इस कहानी की जो बनावट है उसके वास्तुशिल्प को समझने की कोशिश करेंगे।
दिलचस्प।
हम ये जानेंगे कि राउलिंग ने किन साहित्यिक औजारों का इस्तेमाल करके एक साधारण, मतलब एक किशोर के विकास की कहानी को एक वैश्विक सांस्कृतिक घटना में बदल दिया।
ये एक बहुत ही अच्छा दृष्टिकोण है, क्योंकि इस उपन्यास की सफलता सिर्फ इसकी जादुई दुनिया में नहीं बल्कि इसकी जो मनोवैज्ञानिक गहराई है उसमें छिपी है। कहानी की शुरुआत ही मतलब एक गहरे विरोधाभास से होती है। जादू की दुनिया का सबसे प्रसिद्ध बच्चा उस दुनिया से सबसे ज्यादा नफरत करने वाले लोगों के साथ रह रहा है। प्रिविट ड्राइव का डर्सली परिवार सिर्फ बुरा नहीं है,
नहीं,
वो एक प्रतीक है।
सही का।
वे कल्पना और असाधारणता के प्रति, जो हमारे समाज की एक अरुचि है, उसका प्रतीक है।
बिल्कुल सही।
और हैरी का सीढ़ियों के नीचे के अलमारी में रहना, वो सिर्फ एक शारीरिक कैद नहीं है,
नहीं,
वो उसकी पहचान का दमन है। और जब 11वें जन्मदिन पर हॉगवर्ट से चिट्ठियां आनी शुरू होती हैं,
वो एक अद्भुत मोड़ है।
हाँ, वो सिर्फ एक स्कूल का निमंत्रण नहीं है, वो एक पूरी दुनिया है जो अपनी खोई हुई पहचान को वापस बुला रही है। हैग्रिड का दरवाजा तोड़कर आना, वो सिर्फ एक नाटकीय प्रवेश नहीं है,
वो उस साधारण दमनकारी दुनिया के दरवाजे का टूटना है।
बिल्कुल। और हैग्रिड के वो शब्द, तुम एक जादूगर हो हैरी,
ये सिर्फ एक सूचना नहीं है,
ये एक अस्तित्व की पुष्टि है।
हाँ,
यहीं से हैरी की आत्मखोज की यात्रा शुरू होती है। लेकिन राउलिंग यहाँ एक और दिलचस्प परत जोड़ती हैं।
डायगोन अली में,
हाँ, डायगोन अली में पहुंचते ही हैरी को पता चलता है कि वो सिर्फ एक जादूगर नहीं बल्कि एक सेलिब्रिटी है, द बॉय हु लिव्ड, और वो अमीर भी है।
एक ही पल में एक उपेक्षित अनाथ से एक अमीर प्रसिद्ध हस्ती, ये उसके किरदार को कितना जटिल बना देता है ना?
बहुत ज्यादा।
ये उसे एक पारंपरिक अंडरडॉग हीरो होने से बचाता है। अब उसकी लड़ाई सिर्फ बाहरी ताकतों से नहीं बल्कि उस प्रसिद्धि के बोझ और उन अपेक्षाओं से भी है
जिसे उसने कमाया नहीं है।
सही, वो उसे विरासत में मिली है और ये विरासत उसकी छड़ी में भी झलकती है। उसकी छड़ी का कोर वोल्डेमॉर्ट की छड़ी से जुड़ा है।
ये कोई महज संयोग नहीं है।
नहीं, ये एक साहित्यिक संकेत है कि नायक और खलनायक एक तरह से एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनकी नियति आपस में गुंथी हुई है।
और इसी नियति के सफर में उसे साथी मिलते हैं। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में रॉन और हरमाइनी से उसकी मुलाकात
कहानी का भावनात्मक केंद्र स्थापित करती है। वादारी का।
सही, तीनों मिलकर एक संपूर्ण नायक का निर्माण करते हैं। कोई भी अकेले सफल नहीं हो सकता था।
और हॉगवर्ट्स पहुंचते ही कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक प्रश्न पर आती है, सॉर्टिंग हैट वाला दृश्य।
हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है।
हैट हैरी में स्लाइदरिन के गुण देखता है, महत्वाकांक्षा, शक्ति की भूख। ये हमें बताता है कि हैरी में महान बनने की क्षमता है, चाहे वो अच्छाई के लिए हो या बुराई के लिए। लेकिन उपन्यास का जो केंद्रीय संदेश है वो यहीं स्थापित होता है जब हैरी मन ही मन स्लाइदरिन को अस्वीकार कर देता है। बाद में डंबलडोर इसी बात को शब्दों में कहते हैं,
हमारी योग्यता से कहीं ज्यादा हमारे चुनाव ये दर्शाते हैं कि हम वास्तव में क्या हैं।
बिल्कुल, ये एक पंक्ति पूरी श्रृंखला का नैतिक सार है।
और इसी चुनाव के साथ उसकी प्रतिद्वंदिता भी शुरू होती है ड्रेको मैलफॉय के रूप में, जो स्लाइदरिन का प्रतीक है।
मैलफॉय वो बन सकता था जो हैरी बन सकता था अगर वो अलग चुनाव करता।
सही बात है, लेकिन हॉगवर्ट्स का जीवन सिर्फ दोस्ती और दुश्मनी तक सीमित नहीं है, यहाँ एक गहरा रहस्य भी है
जो प्रोफेसर स्नेप के किरदार के इर्द गिर्द बुना गया है।
हाँ,
और प्रोफेसर स्नेप तो राउलिंग की कथा कौशल का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। वो एक क्लासिक रेड हेरिंग है,
मतलब एक ऐसा सुराग जो पाठक को गुमराह करे।
हाँ, जानबूझकर राउलिंग यहाँ पाठक की साहित्यिक अपेक्षाओं के साथ खेलती हैं। हमारा पढ़ा हुआ साहित्य हमें सिखाता है कि जो कठोर और पक्षपाती शिक्षक है
वही खलनायक होता है।
हाँ, और स्नेप उस सांचे में पूरी तरह से फिट बैठते हैं। उनका हैरी के प्रति वो अकारण द्वेष हमें यकीन दिला देता है कि अपराधी वही है।
और राउलिंग इस भ्रम को और पुख्ता करती है, जैसे क्विरिच मैच के दौरान स्नेप का मंत्र पढ़ना।
हाँ, या तीन सिरों वाले कुत्ते से घायल होना।
हर घटना को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि हमारा शक गहरा होता जाए। हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि वो शायद हैरी की रक्षा कर रहा हो।
और ये कहानी की एक बड़ी जीत है कि अंत तक पाठक और नायक दोनों ही धोखे में रहते हैं।
बिल्कुल।
इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में हैरी को दो महत्वपूर्ण जादुई वस्तुएं मिलती हैं, जो सिर्फ कहानी को आगे नहीं बढ़ाती
बल्कि
उसके चरित्र को भी विकसित करती हैं।
पहला है अदृश्यता का चोगा, ये उसे नियम तोड़ने की शक्ति देता है और उसे अपने पिता से भी जोड़ता है।
और दूसरा एरिसेट का दर्पण,
उफ वो दृश्य,
ये इस उपन्यास का शायद सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक क्षण है। दर्पण जिसका नाम अगर उल्टा पढ़ें तो डिजायर बनता है, वो देखने वाले की सबसे गहरी इच्छा दिखाता है।
और हैरी जो हमेशा एक परिवार के लिए तरसा है, वो उसमें अपने माता पिता को देखता है।
ये एक बेहद मार्मिक दृश्य है, ये दिखाता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी दोनों ही उसका अपने परिवार के लिए प्रेम है। और यहीं डंबलडोर का चरित्र उभर कर सामने आता है। वो सिर्फ एक हेडमास्टर नहीं है, वो एक दार्शनिक गुरु है।
हाँ।
उनका वो कथन सपनों की दुनिया में रहना और जीना भूल जाना ठीक नहीं है, हैरी के लिए एक चेतावनी है।
ये लगाव और यथार्थ के बीच संतुलन बनाने का एक महत्वपूर्ण सबक है।
दिलचस्प बात यह है कि यही दर्पण वोल्डेमॉर्ट की कमजोरी को भी उजागर करता है।
वो इसमें खुद को अमर और शक्तिशाली देखेगा, एक स्वार्थी इच्छा, जबकि हैरी की इच्छा प्रेम और जुड़ाव की है।
और इसी फर्क के कारण अंत में हैरी को पारस पत्थर मिलता है।
दर्पण केवल उसे ही पत्थर देता है जो उसे पाना तो चाहता है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता। एक सुंदर नैतिक पहेली है।
तो जब तिकड़ी को पता चलता है कि पत्थर खतरे में है तो वे इसे बचाने का निर्णय लेते हैं।
वे वयस्कों का इंतजार नहीं करते,
वे खुद जिम्मेदारी उठाते हैं।
और तहखाने में जो चुनौतियां उनका इंतजार कर रही हैं, वे सिर्फ जादुई बाधाएं नहीं हैं।
नहीं, वो उनकी दोस्ती और क्षमताओं की एक सुनियोजित परीक्षा है। हर बाधा को पार करने के लिए टिकड़ी के एक सदस्य की विशेष योग्यता की जरूरत होती है। डेविल स्नेयर और पोषण की पहेली के लिए हरमाइनी की तार्किक बुद्धि चाहिए,
और जादूगरों वाली शतरंज की बाजी के लिए रॉन की रणनीतिक सोच और आत्मबलिदान का साहस चाहिए।
वो दृश्य रॉन के किरदार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल, वो सिर्फ हैरी का सहायक नहीं है, वो अपने आप में एक नायक है। वो अपने दोस्तों के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकता है।
और अंत में पंखों वाली चाबी पकड़ने के लिए हैरी की उड़ान भरने की प्रतिभा काम आती है। ये दिखाता है कि जीत किसी एक की नहीं बल्कि सामूहिक प्रयास की होती है।
सही बात है।
तो जब हैरी अंतिम कक्ष में पहुंचता है तो वो स्नेप का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन वहां उसे मिलता है हकलाने वाला डरपोक प्रोफेसर क्विरल।
ये उपन्यास का सबसे बड़ा उलटफेर है।
हाँ, असली खलनायक वो नहीं था जिस पर सबको शक था, बल्कि वो था जिस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया।
और क्विरल की पगड़ी के नीचे वोल्डेमॉर्ट का चेहरा देखना, वो किसी भी युवा पाठक के लिए एक बहुत ही भयावह क्षण है।
ये खुलासा कहानी के मूल विषय को सामने लाता है कि बुराई हमेशा स्पष्ट रूप से नहीं आती,
वो अक्सर कमजोरी और डर का मुखौटा पहनकर छिपी रहती है।
हाँ, वोल्डेमॉर्ट क्विरल के शरीर पर एक परजीवी की तरह जी रहा है, जो दिखाता है कि बुराई खुद जीवित रहने में असमर्थ है।
उसे दूसरों का शोषण करना पड़ता है।
और अंतिम टकराव कोई भव्य जादुई लड़ाई नहीं है, यह एक बहुत ही व्यक्तिगत और मौलिक संघर्ष है।
क्विरल हैरी को छू भी नहीं पाता,
क्योंकि हैरी को उसकी माँ के प्रेम और बलिदान का एक अनसुना सुरक्षा कवच मिला हुआ है।
ये उपन्यास का सबसे शक्तिशाली विचार है
कि प्रेम नफरत और किसी भी काले जादू से ज्यादा ताकतवर है। यह एक ऐसा जादू है जिसे वोल्डेमॉर्ट जैसा महान जादूगर भी कभी समझ नहीं पाया,
और यही उसकी सबसे बड़ी हार का कारण बना। हैरी के स्पर्श से क्विरल का शरीर राख हो जाता है
और वोल्डेमॉर्ट की आत्मा को भागना पड़ता है। हैरी बच जाता है, लेकिन अपनी किसी जादुई शक्ति के कारण नहीं,
बल्कि अपनी माँ के प्रेम के कारण।
कहानी का अंत अस्पताल में होता है, जहाँ डंबलडोर इन सभी रहस्यों को समझाते हैं और हमें दो और गहरे विचार देते हैं।
पहला, मृत्यु के प्रति दृष्टिकोण। वोल्डेमॉर्ट मृत्यु से इतना डरता है कि वो अमर होने के लिए कुछ भी कर सकता है।
वहीं डंबलडोर कहते हैं, एक सुव्यवस्थित मन के लिए मृत्यु बस एक और महान साहसिक कार्य है।
और दूसरा, जब वो नेविल लॉन्गबॉटम को अंक देते हैं।
हाँ, कि दुश्मनों के सामने खड़े होने के लिए साहस चाहिए, लेकिन दोस्तों के सामने खड़े होने के लिए उससे भी ज्यादा।
ये नैतिक साहस का एक बेहतरीन पाठ है।
और अंत में ग्रिफिंडोर की हाउस कप जीतना सिर्फ एक स्कूली प्रतियोगिता का अंत नहीं है,
यह अच्छाई, दोस्ती और साहस की बुराई पर एक प्रतीकात्मक जीत है।
तो जब हैरी डर्सली के घर लौटता है तो वो वही अकेला डरा हुआ बच्चा नहीं है, उसे एक घर मिल गया है, एक परिवार मिल गया है।
और सबसे महत्वपूर्ण, उसे अपनी पहचान मिल गई है।
अंततः यह कहानी हमें याद दिलाती है कि असली जादू मंत्रों और छड़ियों में नहीं बल्कि साहस, दोस्ती और उस प्रेम में है जो हमारी रक्षा करता है।
और ये कि हमारी परिस्थितियां नहीं बल्कि हमारे चुनाव ही हमारे व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं, और यही इस उपन्यास को आज भी इतना प्रासंगिक और शक्तिशाली बनाता है। यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।